मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथान्ते अनिर्दिष्टं केवल ज्ञानं तस्य को विषय निबंध इत्यादाह। अब अंत में पांच ज्ञानों में जो अंतिम ज्ञान है केवल ज्ञान, उसका कथन किया था। तस्य को विषय निबंध, उसका विषय निबंध क्या है, अर्थात केवल ज्ञान किसको विषय करता है, किसको जानता है, तो आचार्य उत्तर देते हैं। उमा स्वामी आचार्य महाराज ने सूत्र कथन करते हैं, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य और पर्यायों में केवल का, केवल ज्ञान का विषय निबंध है। द्रव्याणि च पर्यायाश्च द्रव्य पर्यायाः, द्वंद्व समास किया, द्रव्य और पर्याय द्रव्य पर्याय। इति इतरेतर योग लक्षणो द्वंद्व, इस प्रकार इतरेतर योग नाम का द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के दो भेद होते हैं ना, एक इतरेतर द्वंद्व और एक समाहार द्वंद्व। तो ये इतरेतर योग लक्षण द्वंद्व समास है। तो द्रव्यों को पर्यायों को सबको ग्रहण करना होता है इसमें। तो तद विशेषणम सर्वग्रहणम, तो द्रव्य और पर्यायों का विशेषण बना दिया सर्व को। कितने द्रव्य और कितनी पर्याय, तो आचार्य महाराज ने कहा सर्व, सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय होता है। सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेष्विति, ऐसा संबंध जोड़ना। जीव द्रव्याणि तावद अनंतानंतानि, अब सब द्रव्यों का थोड़ा सा विवरण कर रहे हैं कि जीव द्रव्य कितने हैं, अनंतानंत है। पुद्गल द्रव्याणि च, और पुद्गल द्रव्य कितने हैं, ततोप्यनंतानंतानि, जीव जितने हैं उनसे अनंतानंत गुणित है। आप विचार करो, एक एक जीव के साथ अनंत परमाणु लगे हैं, तो जब एक जीव में अनंत परमाणु है तो फिर अनंत अपॉन वन हो गया ना, यानी जीव जो है उन जीव से अनंत गुणे पुद्गल एक संसारी जीव के साथ हो गए, क्योंकि एक जीव है और उसके शरीर और कर्मों के अनंत परमाणु हैं, तो उन सबको मिलाने पर एक जीव से अनंत गुणित हो गए। तो फिर जीव अनंतानंत है, तो उनसे अनंतानंत गुणे पुद्गल है। अणुस्कंद भेदेन भिन्नानि, फिर उसमें कई अणु है और कई स्कंद है, इन भेदों से वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। धर्मा धर्माकाशानि त्रीणि, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये तीन है, एक एक है। कालश्चासंख्येय, और काल द्रव्य जो है वह असंख्यात है। तेषां पर्यायाश्च त्रिकाल भुवः प्रत्येकम अनंतानंतास, अब इन एक एक द्रव्य की तीन काल संबंधी होने वाली पर्याय भी अनंतानंत हैं। तेषु, उन सब में केवल ज्ञान फैला हुआ है, यानी केवल ज्ञान उन सब को जान लेता है। द्रव्यम पर्याय जातम वा न किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भावम अतिक्रांतम अस्ति। द्रव्य अथवा पर्यायों का समूह कोई भी केवल ज्ञान के विषय पने का अतिक्रमण नहीं करता है, अर्थात सब केवल ज्ञान के विषय बन जाते हैं। अपन एक हफ्ते पहले की बात को भी भूल जाते हैं और उनको त्रिकालवर्ती सब द्रव्यों की तीनों काल संबंधी सब पर्यायों का ज्ञान है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं अपरिमित महात्म्यम हि तत् इति ज्ञापनार्थम सर्वद्रव्य पर्यायेषु इति उच्यते। उसकी महिमा अपरिमित है, अपार है, इसलिए सर्वद्रव्य पर्यायेषु इति उच्यते। इस पर से एक प्रश्न आया था पिछले चतुर्मास में, कि यदि केवल ज्ञान ने सबको जान लिया तो फिर अंतिम पर्याय को भी जान लिया, प्रथम पर्याय को भी जान लिया, तो अगर अंतिम पर्याय को जान लिया तो उसके बाद कोई पर्याय नहीं है, तो उसके बाद द्रव्य का अंत है। और पहली पर्याय को जान लिया तो उस पहली पर्याय से पहले कोई पर्याय नहीं है, तो द्रव्य की शुरुआत और द्रव्य का अंत हो गया, तो द्रव्य सादी शांत हो गया केवल ज्ञान की इस परिभाषा की अपेक्षा से। तो फिर हमने आचार्य वासुपूज्य महाराज श्री के सामने ये प्रश्न रखा, तो आचार्य श्री ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सर्व के चार भेद हैं, उन चारों को केवल ज्ञान जानता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो कौन से चार भेद हैं? तो एक भेद बोला उन्होंने कि अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत और सादि अनंत, इन चारों को मिलाकर सर्व कहते हैं। सर्व में ये चारों आते हैं। तो एक तो हो गया अनादि अनंत, तो अनादि अनंत का अर्थ तो हो गया कि न आदि है न अंत है, तो चार में से एक अनादि अनंत है, वो केवल ज्ञान का विषय है, तो फिर प्रथम और अंतिम का प्रश्न ही नहीं रहा। प्रथम और अंतिम का प्रश्न कहाँ आएगा वो भी इसमें बताया जा रहा है। चार भेदों में एक भेद ऐसा भी है जिसमें प्रथम और अंतिम की चर्चा की जाती है और संभाव्य है, पर अनादि अनंत में प्रथम और अंत का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जब अनादि है तो आदि ही नहीं है। उसके पहले क्या था? था कुछ। उसके पहले क्या था? था कुछ। उससे पहले क्या था? था कुछ। इसके बाद, उसके बाद, उसके बाद रहेगा, 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 कोई सीमा नहीं है, न यहां कोई सीमा है न आगे कोई सीमा है, वो अनादि अनंत है। फिर दूसरा क्या था? अनादि शांत, जो है तो अनादि से लेकिन अंत सहित है। ऐसी क्या वस्तु है जो अनादि से हो और उसका अंत हो जाए? आप लोगों में से कोई भी बताइए, कोई भी ऐसी एक वस्तु बता दो, कोई भी एक ऐसी पर्याय बता दो। क्या? संसार। बहुत सुंदर। संसार जो होता है चार गतियों में भ्रमण करना, वो अनादि है लेकिन उसका अंत तो होता है, तो अनादि शांत हो गया। इसी तरह मिथ्यात्व भी है, मिथ्यात्व का उदय अनादिकाल से चल रहा हो किसी जीव के लेकिन उसका अंत हो जाए, सम्यक दृष्टि बन जाए, तो अनादि शांत हो गया। अनादि यानी आदि से रहित और शांत यानी अंत सहित। और संसार में जो जो भाव होते हैं वो सब अनादि शांत हो सकते हैं। मतलब कोई जीव मुक्त हो जाए तो फिर वो जितने भाव संसार में विद्यमान थे उनका अंत हो जाएगा, तो वो सारे भाव उसमें गिने जा सकते हैं अनादि शांत भावों में। जैसे भव्यत्व है, तो भव्यत्व जो है वो 14वें गुणस्थान के अंत तक के हैं, और जैसे ही सिद्ध पर्याय होती है भव्यत्व समाप्त हो जाता है। दसवें अध्याय में एक सूत्र है ना, औपिशमिकादि भव्यत्वानां च, क्या क्या नष्ट हो जाता है मोक्ष में, औपिशमिकादि के भाव नष्ट हो जाता है और भव्यत्व भी खत्म हो जाता है। भव्यत्व का अर्थ क्या होता है, होने योग्य। अब सिद्ध हो गए तो अब होने योग्य का क्या स्थान रहा, वो बात बीत गई होने योग्य वाली बात। जैसे मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर होने योग्य, अब डॉक्टर बन चुका तो वो स्टूडेंट कहलाएगा क्या मेडिकल का, वो तो डॉक्टर कहलाएगा। वैसे ही है, तो ये अनादि अनंत और अनादि शांत दोनों के उदाहरण हो गए। अभव्यत्व भाव अनादि अनंत है, क्योंकि अभव्य जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और सब द्रव्यों का अस्तित्व अनादि अनंत है, अनादिकाल से सब द्रव्य अनंत काल तक रहेंगे, और सभी द्रव्यों के जो गुण है वो अनादि अनंत है। पर्यायनी जो गुण है वो द्रव्य और गुण दोनों अनादि अनंत है। पर्याय तो अवस्था होती है, अवस्था अनादि अनंत नहीं है। अब सादी की बात करें, सादी अनंत, ऐसा कौन सा भाव है जो जिसकी शुरुआत तो हो लेकिन अंत ना हो, क्या कौन सा, आत्मा। आत्मा सादी कहां से हो गया, आत्मा की शुरुआत थोड़ी होती है, आत्मा तो अनादि अनंत है। क्षयिक सम्यक, तो बिल्कुल सही कहा आपने। सिद्धत्व ये भी सही है कि सिद्ध पर्याय प्रारंभ तो होती है लेकिन कभी नष्ट नहीं होती, तो सादी अनंत हो गया। और कोई सिद्धों के जितने गुण हैं उनको भी आप अलग अलग ले सकते हैं, सादी अनंत है वो। फिर सादी शांत, जिसकी आदि भी है और अंत भी है, वो क्या है, अरहंत पर्याय है ना, शुरू भी होती है और समाप्त भी होती है। ऐसी और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे आपके अपनी मनुष्य पर्याय है, शुरू भी हुई है और समाप्त भी हो जाएगी, सादी शांत। और कोई उदाहरण, इसके तो सबसे ज्यादा उदाहरण मिलेंगे आपको सादी शांत के। ये जितनी चीज आपके सामने दिख रही है, जितने इंद्रियों के विषय हैं आपके सामने, वे सब सादी शांत नहीं है, पर्याय की अपेक्षा है, द्रव्य की अपेक्षा नहीं, सारे इंद्रियों के विषय सादी शांत है। इसी तरह मिथ्यात्व भी सादी शांत हो सकता है, किसी को सम्यक दर्शन हो गया फिर मिथ्यात्व में आ गया, तो वहां से मिथ्यात्व शुरू माना जाएगा। अनादि मिथ्यात्व था, वो तो पहले ही छूट गया था जब सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन अब सम्यक दर्शन से वापस मिथ्यात्व में आया तो मिथ्यात्व की पर्याय प्रारंभ हो गई ना, ये बिल्कुल नई प्रारंभ हुई है, तो ये सादी हो गया। और जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो चुका है उसका मिथ्यात्व हमेशा के लिए नहीं रह सकता, कभी ना कभी वो वापस सम्यक दृष्टि बनता है, तो फिर जब वो वापस बनेगा सम्यक दृष्टि तो मिथ्यात्व का अंत हो जाएगा, तो साधी शांत हो गया। तो ऐसे चारों प्रकार के पदार्थों को केवल ज्ञान विषय करता है, इसलिए सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व में ये चार भेद आते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं सर्व में ये आते हैं इसकी क्या सिद्धि है, तो फिर आप बताइए कि सर्व में इनमें से कौन सा नहीं आता है, बताओ। आप ये सिद्ध करके बताओ कि अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत, सादि शांत, इन चार में से सर्व में कौन सा नहीं आता है, ये आप प्रमाणित कर दो। तो अपने आप प्रमाणित हो जाएगा कि ये चार नहीं आते सर्व में, इनमें से कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। तो सर्व शब्द का अर्थ ये नहीं है कि सादि शांत हो, सर्व का अर्थ ये नहीं है कि पहली पर्याय को भगवान ने जान लिया और अंतिम पर्याय को जान लिया। जब वस्तु व्यवस्था ही नहीं है वैसी पहली और आखिरी वाली, अनादि है और अनंत है, तो फिर पहली और आखिरी की चर्चा करना ही भूल है, कैसे संभव है? जिसकी कोई शुरुआत ही ना हो और जिसका कोई अंत ही ना हो, तो उसके बारे में अपन ये निशान कैसे लगा सकते हैं कि यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है, ये कैसे संभव है? असंभव है। इसलिए सर्वद्रव्य पर्यायेषु में चारों आ जाते हैं और इनको केवल ज्ञान एक क्षण में जानता है, एक क्षण में प्रतिक्षण जानता रहता है। इसलिए आचार्य महाराज ने यहां पर अंत में यही कह दिया, अपरिमित महात्म्यम हितत, उसकी महानता असीम है, कोई सीमा नहीं है, इतना महान ज्ञान है वो केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के विषय में थोड़ा सा एक संग्रह है छोटा सा। केवल ज्ञान किनको प्राप्त होता है इसके विषय में, होने अनिगंथो अभेदरण तेजो ठादि अंत मुहूर्त कालम अप्पा सो हो परमप्पा, जो निर्ग्रंथ होकर अभेद रत्नत्रय अर्थात शुद्धोपयोग में अंतर मुहूर्त काल स्थिर रह जाते हैं, उनका वज्र वृषभ नाराज संगनन हो, क्षायिक सम्यक्त हो और उस शुद्धोपयोग के काल में वो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो, तो अंतर मुहूर्त काल अगर उस ध्यान में लीन हो जाए तो अप्पा सो हुई परमप्पा, वो आत्मा परमात्मा हो जाते हैं। फिर कहते हैं सिद्धत्तादो पुरदो जीवो अरिहो हवे नियमेन घयलाहादो पुरदो पैडे धवलणव नीदम। सिद्ध पद के पहले अरिहंत पद नियम से होता है, यानी जो भी सिद्ध होंगे उसके पहले अरिहंत अवश्य होंगे और जो अरिहंत होंगे वो सिद्ध अवश्य होंगे, ये ध्यान में रखना है। उदाहरण दिया है कि जैसे घी बनेगा तो पहले मक्खन होगा, है ना, नवनीत होगा, गर्म गैराय दोसमूह बंदरिकम्मे हिणेव अप्पाणम बहुजम्म बद्ध कम्मम जये फुडम थोव कालीन। वितराग आत्मा कर्मों को बांधता नहीं है, बल्कि अनेक जन्मों के बांधे हुए कर्म को अल्प काल में नष्ट कर देता है। परिणाम अन्न रूपम जीव सहावो विकम्म जोगेण कम्म विजय दुनियदम अपसरूवेण परिणमी। जीव का स्वभाव कर्मों के संयोग से अन्य रूप हो जाता है और कर्मों के झड़ने से स्वस्वरूप हो जाता है। तम्मा शुद्धा शुद्धो जीव सहावो जिणागमे भणियो एक को कम्म निमित्तो विधियो गुण कम्म निर्वेखो। इसलिए आगम में जीव का स्वभाव शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का कहा है। अपन बोलचाल में स्वभाव का अर्थ शुद्ध स्वभाव ही समझते हैं, जबकि शास्त्र में शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो स्वभाव बतलाए जीव के। एक कर्म निमित्तक स्वभाव होता है, दूसरा कर्म निरपेक्ष स्वभाव होता है। तो कर्म निमित्तक स्वभाव जो है वो अशुद्ध स्वभाव है, कर्म सापेक्ष स्वभाव जो है वो अशुद्ध स्वभाव है, कर्म निरपेक्ष स्वभाव शुद्ध स्वभाव है। तो शुद्ध अपेक्षाकृत शुद्ध और सर्वथा शुद्ध ऐसे दो प्रकार का होता है। अपेक्षाकृत शुद्ध जो है वो क्षय की अपेक्षा रखता है, ऐसा क्षयिक भाव सापेक्ष शुद्ध भाव है। और एक ऐसा भाव है जो उदय उपशम क्षय क्षयोपशम किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वो त्रिकाल शुद्ध रहता है, वो पारिणामिक भाव होता है। पारिणामिक भाव अशुद्ध नहीं होता। जो कर्म जिस कार्य को करता है उस कर्म के अभाव में वह कार्य संभव नहीं है। जैसे ज्ञानावरण का अभाव हो जाए तो ज्ञान पर कोई आवरण या अवरोध संभव नहीं है। और यही कारण है कि जिनेंद्र भगवान का ज्ञान ज्ञानावरण के क्षय के कारण अनवरुद्ध है, कहीं भी रुक नहीं सकता, सबको जानता है। अब ध्यान से सुनने की बात है कि वो केवल ज्ञान किस प्रकार का होता है। दिव्यं खाइय नाणम अदिद्यम केवलं च पच्चखम अन्नानिच्छा रहियम सहजं तम्मा परम सुखम। केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान भी कहते हैं, केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान भी कहते हैं, केवल ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहते हैं। केवल ज्ञान को केवल ज्ञान तो कहते ही हैं, और एक नाम और है केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, सकल प्रत्यक्ष। उसमें अज्ञान और इच्छा का अभाव होने से वो परम सुख स्वरूप होता है। जिस ज्ञान के साथ अज्ञान और इच्छा जुड़ी होती है उसमें खेद होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है। लेकिन केवल ज्ञान में अज्ञान भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। अपने ज्ञान में देखिए क्या है, जितना जान रहे हैं उतना ज्ञान है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं वो तो अज्ञान है ही साथ में। तो अपूर्ण ज्ञान जो होता है ना उसमें अज्ञान का भी समावेश होता है। अभेदने से देखो तो फिर ज्ञान ज्ञान है, अज्ञान अज्ञान है, लेकिन एक जीव में एक साथ दोनों हो सकते हैं। अज्ञान भी होता है, ज्ञान भी होता है। किसी विषय का ज्ञान होता है, किसी विषय का अज्ञान होता है, ऐसा भंग बनता है। उसको सर्वोत्कृष्ट ज्ञान भी कहते हैं। जैसे एक हम आपको एक जानकारी देते हैं ओंकार के बारे में, कुमार कवि द्वारा रचित आत्म प्रबोध ग्रंथ में एक व्युत्पत्ति दी है, ओम कैसे बनता है। तो उन्होंने लिखा है, सबसे पहले मतिक ज्ञान। मतिक ज्ञान का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिनिबोध। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। तो वो अभिनिबोध, और अभिनिबोध मतिक ज्ञान में होता है, इसलिए मतिक ज्ञान को अभिनिबोधिक कहते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में मतिक ज्ञान का नाम अभिनिबोधिक ज्ञान है। तो अभिनिबोधिक ज्ञान का आ ले लो। फिर श्रुतक ज्ञान को आगम ज्ञान कहते हैं, उसका आ ले लो। तो आ में आ जोड़ दोगे तो आ रहेगा। फिर तीसरा अवधि ज्ञान है, उसका अ ले लो। तो आ आ और अ, इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या रहेगा? आ। समान सवर्णी दीर्घी भवती परश्च लोपम आपद्यते। अ और आ सवर्ण है, दोनों को मिला लेने से दीर्घ हो जाते हैं, और जो बाद में आया उसका लोप हो जाता है। फिर मन पर्याय का दूसरा नाम अंत पर्याय है, क्योंकि मन का दूसरा नाम अंतस है। कोश में आप देखेंगे तो मन को अंतस भी बोलते हैं। मेरे अंतस में संकल्प विकल्प हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे मन में संकल्प विकल्प हो रहे हैं। तो अंत पर्याय, ये मन पर्याय का दूसरा नाम हो गया, उसको जोड़ दो। आ आ अ अ, चारों को जोड़ दिया, क्या बना? आ बना ना, या फिर उसको चार होने के कारण ज्यादा लंबा खींचो गया आ, ऐसे डॉक्टर के सामने मुंह खोलते वैसे नहीं, आ रहेगा वो। इसके बाद केवल ज्ञान का दूसरा नाम उत्कृष्ट ज्ञान है। केवल ज्ञान के कई नाम है, अभी जैसे अपन ने पढ़े ना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान केवल ज्ञान का एक नाम है। तो उत्कृष्ट का उ ले लीजिए तो क्या बनता? ओवर्णे ओ। अवर्ण के सामने अगर ओवर्ण आता है तो फिर अ प्लस उ ओ हो जाता है। और जिनके पास ये ओ होता है, माने जिन्होंने मति ज्ञान प्राप्त किया, श्रुत ज्ञान प्राप्त किया, अवधि मन पर ज्ञान प्राप्त किया या ना किया, जो भी हो, वो तो मति और श्रुत के साथ भी अगर आप ऊ जोड़ोगे ना तो ओ ही बनेगा। तो अंत में फिर मोक्ष का म होता है, तो क्या बना? ओम बन गया। तो ओम बनाने की एक प्रक्रिया ये भी है। ऐसे हमने 21 प्रकार से ओम बनाए थे, एक बार बैठे बैठे बैठ के सब निकाल रहे थे, तो अलग अलग तरह से बन रहा था। ऊर्ध्वलोक, ये तो जिनेन्द्र वर्णी जी के उसमें पढ़ा था हमने शांतिपद प्रदर्शन में, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, ऐसे करके क्रम करेंगे अपन। तो अधोलोक का अ ले लिया, ऊर्ध्वलोक का ऊ ले लिया, और मध्यलोक का म ले लिया, ओम बन गया। ऊ दीर्घ हो या ह्रस्व हो एक ही बात, संधि में तो एक ही रूप बनते हैं, ओम बन गया। फिर तीन काल को लेना हो तो कैसे लेंगे? अतीत काल का अ ले लिया, फिर भविष्यत काल को उदर्क कहते हैं, उदर्क, उसका ऊ ले लिया, और मध्यकाल, तो अतीत और उदर्क का मध्यकाल कौन सा हो सकता है? वर्तमान। तो अतीत, उदर्क और मध्य, तीन काल, तीन लोक और तीन काल ओम में आ जाते हैं। अरहंत, अशरीर, आचार्य, उपाध्याय और मुनिराज, पांच परमेष्ठी भी आ जाते हैं। अरहंता अशरीरा, ಆಯಿರಿಯ ವಜ್ಜಯ ಮುನಿಣು ಪಂಚಕ್ಕರ ನಿಪ್ಪಣ್ಣು ಓಂಕಾರು ಪಂಚ ಪರಮೇಠಿ ಎಸಿ ಎಕ್ ಗಾಥಾ ಹೈ ಕಿ ಅರ್ಹಂತ್ ಔರ್ ಶರೀರ್ ಆಯಿರಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಉವಜಾಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಔರ್ ಮುನಿಣು ಮ ಮುನಿ ಇಸ್ ತರ ಇನ್ ಪಾಂಚ್ ಅಕ್ಷರೋ ಸೆ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಓಂಕಾರ ಹೋತಾ ಹೈ ಪಂಚ ಪರಮೇಠಿ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾ ವಾಚಕ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಓಂಕಾರ ಮೇ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾಂಚ್ ಜ್ಞಾನ ಔರ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಭಿ ಜೋ ಅಪನ್ ನೆ ಪಹಲೆ ದೇಖಾ ಥಾ ಆತ್ಮ ಪ್ರಬೋಧ ಗ್ರಂಥ ಮೇ ತೀನ್ ಲೋಕ ತೀನ್ ಕಾಲ್ ಫಿರ್ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರು ಕೋ ಅಗರ್ ಲಾನಾ ಹೋ ತೋ ಉನ್ಕೋ ಭಿ ಲಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕೈಸೆ ಲಾಓಗೆ अरहंत और अशरीर यानी अरहंत और सिद्ध भगवान दोनों देव हैं, है ना, तो उनका वो ले लीजिए नहीं देव शास्त्र गुरु उसको अपन निकालते हैं। अभी अपन विषयांतर जा रहे हैं, थोड़ा मूल विषय केवल ज्ञान का चल रहा था और विषयांतर जा रहे हैं, इसलिए स्मृति वहां साथ नहीं दे रही। ये विषय जो है वो वहां एक जगह लगता है ना मन या दिमाग, तो उस तरफ ज्यादा काम करता है। देखते हैं, देवशास्त्र गुरु भी आ जाएंगे, अभी चिंता नहीं करना। अनंत ज्ञान भी कहते हैं केवल ज्ञान को। देखिए ये सारे कितने सुंदर सुंदर नाम है, ये संग्रह करने योग्य हैं। कौन से हो गया? सबसे पहला क्या था? दिव्य ज्ञान, फिर शायिक ज्ञान, अतिज्ञेय ज्ञान, केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान और अनंत ज्ञान, ऐसे सात नाम हो गए। तो इसलिए केवल ज्ञान जो होता है एक साथ सब तरफ से सब प्रकार से सबको अनायास जान लेता है, क्योंकि उसमें कोई आवरण नहीं है। बादल ना हो तो सूर्य का प्रकाश सब जगह फैल जाता है, बादल हो तो ऐसे फिल्टर होकर के आता है छन करके। फिर एक सुंदर बात आती है, चित्तली आयारा तियाल विषया समंपि दिस्संते विस्संस सदसब भूदम तह वट्टदि दिव्यनाणेवी। जिस प्रकार भूत भविष्यत और वर्तमान तीन काल संबंधी चित्र बनाने पर, जैसे भूतकाल के 24 तीर्थंकरों का चित्र बना दिया, फिर आज के कोई वर्तमान के कोई आचार्य हैं उनका चित्र बना दिया, और भविष्यकाल के महापद्म आदि 24 तीर्थंकरों का चित्र बना दिया, तो उस चित्र में जो है काल भेद नहीं है। चित्र में भूत भविष्य वर्तमान है क्या? चित्र में तो एक साथ तीनों हैं, है ना, लेकिन वस्तु में, वस्तु रूप में अपन देखें तो फिर भूत भविष्य वर्तमान के हो जाएंगे। तो केवल ज्ञान में जैसे चित्र में तीनों काल की आकृतियां एक साथ हो जाती है, वैसे ही केवल ज्ञान में तीनों काल की सब पर्याय एक साथ वर्तमान के समान स्पष्ट होती है। जैसे अपने को अभी आज अपने दर्पण में अपना जैसा चेहरा दिख रहा है, उनको तीनों काल एक साथ केवल ज्ञान के दर्पण में दिखाई देते। अब यहां पर थोड़े शंका समाधान है। ਇਹ ਉਪਜ ਦੇ ਪੁੱਛਾ ਕੇਵਲ ਨਾਣਮ ਦਿਆਲ ਪਰਿਮਾਣਮ ਪਰਿਣਮਣਮ ਜੈ ਜਾਣਮ ਤੋ ਸਵ ਜੈ ਜਾਣੇ ਤੋ ਸਵਮ ਪਰਿਣਮਣਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤਮ ਜਾਦਮ। ਅਬ ਯਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਤੀਨੋ ਕਾਲੋ ਕੋ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਗਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੋ ਕਭੀ ਅਨਯਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ। ਤੋ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੋ ਹੀ ਹੋਗਾ ਭਵਿਸ਼ਯ ਮੇਂ, ਆਪਣ ਕਿਉਂ ਮਾਥਾ ਕੁੱਟ ਮਾਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰੇ। ਜਬ ਹਮਾਰਾ ਮੋਕਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ, ਤਬ ਹਮ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਮੋਕਸ਼, ਆਜ ਸੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਔਰ ਤਪ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਪਾਪ, ਕਿਉਂ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਕੋਵਿਨ ਕੱਤੁਨ ਸਕਦੀ ਕਿੰਪਿ ਤਦੰਡਮ ਤਿਲੋਏ ਮੱਜਮ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਗਿਆਨ ਮੇਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਆਏ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ। ਤੋ ਇਸਸੇ ਨਿਯਤਿਵਾਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਯਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲੀ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਯਹਾਂ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਸਕਾ ਜੋ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਸੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੋ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਰਨ ਕਾਰਿਆ ਕਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਸ ਵੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਾਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੁਣਕਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਮਾ ਪੁਣਮ ਪਾਵਮ ਕਰੇ ਦਿਲੋ ਯਮਿ ਕੋਵੀ ਨ ਮਣਵੋ, ਤੋ ਫਿਰ ਪੁਣ ਔਰ ਪਾਪ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੋ ਜੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੁਣ ਔਰ ਕਿਆ ਪਾਪ ਹੈ। ਧੰਮੇਣ ਵੀ ਕੋ ਲਾਹੋ ਜੈ ਸਵਮ ਸਵਹਾਣੀ ਅਧਮ, ਧਰਮ ਸੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ, ਜਬ ਸਭ ਕੁਛ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਨਿਯਤ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸੇ ਕਿਆ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ, ਜੈ ਭਣੈ ਆਗਮਿਸਦੀ ਮਮ ਕਲਾਣਸ ਜੋਗ ਕਾਲੋ ਵੀ, ਪੁਰਿਸੱਥ ਵਿਮੋਹ ਪੁਰਿਸੋ ਕਾਲ ਮੋਹੇ ਸੋ ਸਵਯਮ ਵਿਸਈ। ਯਦਿ ਕੋਈ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾ ਸਮੇਂ ਜਬ ਆਏਗਾ, ਯੋਗ ਕਾਲ ਜਬ ਹੋਗਾ, ਤਬ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਗਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ। ਤੋ ਯੋਗ ਕਾਲ ਆਏਗਾ ਤਬ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਗਾ, ਐਸਾ ਸੋਚਤੇ ਸੋਚਤੇ ਉਸਕਾ ਕਾਲ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਮ੍ਰਿਤਯੁ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਘੜਣਾ ਕਮੂ ਜਿਣੀ ਹੀ ਨਾਦੋ ਸਵੋ ਸਹੇਓ ਲੋਏ, ਕਾਰਣ ਕੱਜ ਵਿਹਾਣਮ ਤਦੋ ਹਿਤੇ ਹੀ ਸਮਵੈਠਮ। ਖਾਸ ਬਾਤ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੇਵਲੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਤਰ ਪਰਿਆਯੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ ਪਰਿਆਯੋ ਕੇ ਉਪਾਦਾਨ ਔਰ ਨਿਮਿੱਤੋ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸੇ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ, ਕੇਵਲੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਨ ਪਰਿਆਯੋ ਕੇ ਉਪਾਦਾਨ ਯਾਨੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰੰਗ ਹੇਤੂ ਔਰ ਨਿਮਿੱਤ ਯਾਨੀ ਬਾਹਿਯ ਕਾਰਨ, ਇਨ ਦੋਨੋ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਰਨ ਸਹਿਤ ਕਾਰਯ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਕਾਰਯ ਵਿਧਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰਯ ਕਾਰਯ ਜਾਣਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੋ ਸ਼ੰਕਾਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁਣ ਪਾਪ ਧਰਮ ਸੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੋ ਹੋਗਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨੇਂਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਕੈਸੇ ਹੋਗਾ, ਅਗਰ ਕੈਸੇ ਹੋਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਰਹਿਤਾ, पर उनने ये जाना है कि कैसे होगा। नाणम कुण दिन विस्सम कज्जमणीय हे उणा हवे नियदम हेउ हे उमय भावो नेव जदु नेयनाणीसु। ज्ञान जो होता है वो घटनाओं का कारण नहीं होता। केवल ज्ञान जो है, अब केवल ही भगवान ने जाना है कि द्वारिका जलेगी, नेमिनाथ भगवान ने तो जाना था ना द्वारिका जलेगी, तो उनके जानने के कारण जली क्या? उनने ये भी तो बोला था कि द्वैपायन के कारण जलेगी। क्यों बोला था? अगर द्वैपायन कारण नहीं होते द्वारिका के जलने में, तो भगवान कह देते कि मैंने जाना है इसलिए जलेगी, द्वैपायन को क्या लाने की जरूरत है वहां पर, मैंने जान लिया ना कि जलेगी तो अब इधर उधर की बातें मत करो, जलेगी बस, मैंने जान लिया। ऐसा नहीं बोला उनने। उनने क्या बोला? द्वैपायन के कारण जलेगी। और कृष्ण जी का अंत कैसे होगा? श्री कृष्ण जी का बोले जलत जरत कुमार के माध्यम से होगा, जरत कुमार के बाण से। उनने ये नहीं कहा कि मैंने जाना है कि उनका अंत वहां कौशाम्बी के वन में होगा इसलिए होगा, ऐसा नहीं। ज्ञान कारण नहीं है घटनाओं का, घटनाओं के कारण भिन्न है। इसलिए घटनाएं अपने हेतुओं से नियत है, केवल ज्ञान से नियत नहीं है। और ज्ञान और ज्ञेय में कारण कार्य भाव नहीं होता। ज्ञान घटनाओं का कारण नहीं होता। केवल ज्ञान की बात चल रही है यहां पर, तो इनमें हेतु हेतुमत भाव नहीं होता, कारण कार्य भाव नहीं होता। अब इसके और दृष्टांत देते हैं जिससे एकदम सरल हो जाएगी बात। जह जो इस कहना दो मरण दिन जीवो कयावे वा कोई आउखैण नियमा मिच्छु जम आगमे भणिया। आगम में मृत्यु आयु के क्षय से बताई गई है। ज्योतिष की भविष्यवाणी से कोई नहीं मरता। बात समझ में आ रही है? ज्योतिष ने कह दिया कि तुम 2 साल बाद मर जाओगे, उसके बोलने से मर जाएंगे क्या, या अपनी आयु के क्षय से मरेंगे? आयु के क्षय से मरण होता है। तो उसी प्रकार केवली ने कह दिया कि 12 साल में द्वारिका जलेगी, तो केवली के बोलने से द्वारिका जलती है, या उनके ज्ञान में था कि वो जलेगी तो जलेगी, अपने कारणों से जलेगी, उनके वचनों से नहीं जलेगी। एक और उदाहरण दिया, नथि हेउ फल भावो नाणे नादेय वत्थ जादम्मी जहदप्पणोण हेउ मंद हसन जुत्त वदनस। जाने गए वस्तु समूह में और जानने वाले ज्ञान में कारण कार्य संबंध उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार मंद मुस्कान से युक्त मुखड़े का कारण दर्पण नहीं है। दर्पण के सामने आप स्माइल देते हैं तो क्या दर्पण आपको स्माइल दिलवाता है? तो दर्पण आपके स्माइल का कारण है क्या? नहीं है। आप अपनी इच्छा से स्माइल करते हैं, अपने भावों से स्माइल करते हैं। दर्पण में मुस्कान युक्त मुख का प्रतिबिंब मात्र पड़ता है, दर्पण उस मुस्कान का कारण नहीं होता। उसी प्रकार केवल ज्ञान सब घटनाओं को जानता है, पर जानने मात्र से वह उन घटनाओं का कारण नहीं हो सकता। अब कारण क्या है? तो बोले सोहेउ दुवियप्पु बहिरंगो चावि अंतरंगो वा नियदव्वम अंतरंगो परदव्वम हुई बहिरंगो। वो कारण जो होता है उसके 2 भेद होते हैं, अंतरंग कारण अपना द्रव्य, बहिरंग कारण पर द्रव्य। तो दोनों द्रव्य के संबंध से कार्य संपन्न होता है। ये कारण कार्य भाव दिगंबर मत में है। श्वेतांबर मत में पंच समवाय की मान्यता है। दिगंबर मत में अंतरंग कारण बहिरंग कारण बस दो ही है पर्याप्त, और क्या चाहिए आपको? ஜெய் கேவலினானாது மண்ணை செவ்வம் பிசவ்வகாணியதும் தூ கேவலினா பணியம் தும்மரண பரிணம் பருவனாமிச்சா. यदि ऐसा मान ले कि केवल ज्ञान की अपेक्षा सब कुछ निश्चित है, तो फिर केवल ज्ञानी ने जो मरण के दो भेद किए हैं बताए हैं वो गलत हो जाएंगे, मिथ्या हो जाएंगे. अकाल मरण, अकाल मृत्यु और सकाल मृत्यु, अयथाकाल मरण और यथाकाल मरण, ऐसे मरण के दो भेद बताए केवली भगवान ने. तो ये दो भेद नहीं बनेंगे. अगर अपन ये मान लेंगे कि केवल ज्ञान की अपेक्षा सब कुछ निश्चित है, तो केवल ज्ञानी दोनों मरणों को जानते हैं, तो उनके ज्ञान के अनुसार तो दोनों मरण निश्चित हो गए. अकाल मरण भी निश्चित हो गया और सकाल मरण भी निश्चित हो गया. नहीं देखो, निश्चित मानने वाले जो पक्षधर लोग हैं उनका कहना यह है कि केवली ने जब उसका मरण जाना था तभी तो हुआ ना, चाहे अकाल हुआ हो या सकाल हुआ हो. तो अकाल कहां रहा, उनके जाने हुए काल में ही तो मरण हुआ, ऐसा कहते हैं. हाँ, वो अभी आने वाला है, दूसरे अध्याय में सब पूरा विषय स्पष्ट हो जाएगा. हाँ बिल्कुल, दो भेद बनेंगे नहीं. अगर अपन केवल ज्ञान से मरण का वर्णन करेंगे तो वो तो केवली ने जिसका 70 साल में मरण जाना है उसका 70 साल में मरण होगा बिना एक्सीडेंट के, और जिसका 20 साल में मरण जाना उसका एक्सीडेंट के साथ भी 20 साल में मरण होगा. तो केवल ज्ञान के अनुसार तो बिल्कुल उसी समय पर मरण हो रहा है जब केवली ने जाना है. बिल्कुल सही बात है, हेतु पर निर्भर करता है. हेतु के अनुसार केवली भगवान ने दो भेद बताए, यानी जितनी आयु जो जीव बांध करके लाया है उतनी आयु को निषेकों के क्रम से अगर वो पूर्ण करता है बिना उदीर्णा के, बिना कदली घात के, तो फिर उस मरण को उन्होंने सकाल मरण कहा, यथाकाल मरण कहा है. और अगर वो उतनी आयु, मटके में पानी है उसको आप थोड़ा थोड़ा निकाल करके पी रहे हैं तो एक टाइम लगेगा उसको पूरा होने में, और एक पत्थर मार दिया आपने तो वो पहले भी खाली हुआ था धीरे धीरे निकालने से, और पत्थर मारने से भी खाली हुआ, तो दोनों में समानता है क्या, अंतर है, तो फिर दोनों मरण एक कैसे हो सकते हैं क्या, घटना एक कैसे हुई, आयु का क्षय. हाँ हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, एक द्रव्य की एक काल में दो पर्याय नहीं होते ना. हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो ठीक है, इसमें संदेह नहीं है. पर इसके आधार पर कोई अगर नियतिवाद को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि केवली के ज्ञान के माध्यम से बहुत सारे वाद बनाए जा सकते हैं. केवली ने पुरुषार्थ का भी कथन किया तो कोई पुरुषार्थवाद बना ले, केवली ने नियति का कथन किया तो नियतिवाद बना ले, काल का कथन किया तो काल को प्रमुख मान ले कि जब जिसका समय आता है तब वो हो जाता है, बोलते ही बहुत सारे लोग. ये नियति में क्या, वो घटना को प्रमुख कर रहे हैं, और काल में काल को प्रमुख कर रहे हैं, पुरुषार्थ में उद्यम को प्रमुख कर रहे हैं, और भाग्य में अपने पूर्व कर्म को प्रमुख कर रहे हैं, अनेकांत में स्यादवाद में सबको बराबर महत्व दिया गया है. तो अगर इनमें से किसी भी एक को किसी ने पकड़ लिया वो एकांतवादी हो जाता है, और जैसे ही एकांतवादी होता है तो सम्यक दर्शन नहीं रहता, मिथ्यात्व हो जाता है. वो वैसा उनको सिखाया गया है ये कह सकते हैं, अथवा उन्होंने वैसा सीख लिया है, ये कह सकते हैं। अभी हम उसकी चर्चा बाद में करने वाले, इनका जो प्रश्न है उसका उत्तर समझना बहुत जरूरी है। ये अकाल मरण सकाल मरण की चर्चा तो आगे विस्तार से आएगी अभी स्वाध्याय में। तो इनका प्रश्न क्या था कि निमित्त कुछ करता नहीं है, वो वहां उपस्थित रहता है। जब घटना होती है तब निमित्त वहां पर उपस्थित रहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि निमित्त का उस घटना में कोई योगदान नहीं है, ऐसा अर्थ लेंगे, या योगदान होते हुए भी वो अकर्ता के रूप में उपस्थित है ऐसा? क्योंकि कर्ता जो है निश्चय ने से कर्ता किसको कहते हैं, यह परिणमति से कर्ता, द्रव्य को कर्ता कहते हैं, क्योंकि परिणमन अर्थात पर्याय जो होती है वो द्रव्य की होती है। तो पर्याय का कर्ता द्रव्य होता है निश्चय ने से। एक द्रव्य चूंकि दूसरे द्रव्य के पर्याय को उत्पन्न नहीं करता, उसमें निमित्त हो सकता है, जैसे अग्नि है वो रोटी की पर्याय में निमित्त हो सकती है, लेकिन अग्नि रोटी नहीं बनती है, इसलिए अग्नि को कर्ता नहीं कहा। पर कारण दो प्रकार के बताए हैं, उपादान कारण जिसको निश्चय से कर्ता कहते हैं, और निमित्त कारण जिसको सहकारी कहते हैं। तो अष्टशती ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव ने लिखा है, तद सामर्थ्यम अखंडयत कथम सहकारी कारणम अकिंचित कर्म स्यात्। यानी उस द्रव्य की असमर्थता को अखंड करने वाला, यानी समर्थ बनाने वाला, द्रव्य को समर्थ बनाने वाला जो निमित्त है, सहकारी कारण है, वो अकिंचित कर अर्थात कुछ नहीं करने वाला कैसे हो सकता है? लाठी है, वृद्ध व्यक्ति बिना लाठी के नहीं चल सकता, तो वो जो लकड़ी है पकड़ा हुआ है वो कुछ नहीं करती, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? अब वो कहेंगे कि उसमें चलने की शक्ति थी, लाठी तो वहां उपस्थित थी, तो उपस्थित जो होती है वस्तु उसको अगर आप निमित्त मानोगे तो चौके में रसोई घर में ट्यूबलाइट भी उपस्थित है, ये चंदोबा भी उपस्थित है, वो बाजू में पानी का ग्लास भी रखा है, डब्बे में चने की दाल वगैरह बहुत सारी चीजें रखी है, लेकिन नीर डोसा बनाते समय क्या निमित्त है ये बताओ? ये सारी चीजें उपस्थित है वो सब निमित्त है क्या? तो उपस्थित वस्तु को निमित्त मानना ही भ्रम है। वहां निगोदिया जीव भी उपस्थित है, तो अपने को ढूंढना पड़ेगा कि निमित्त क्या है। तो आचार्य विद्यानंदी ने आप्त परीक्षा ग्रंथ की 9वीं कारिका में लिखा है, टीका में उनके श्लोक है और उनकी टीका है। उन्होंने लिखा है कि जिसके होने पर कार्य होता है और नहीं होने पर नहीं होता उसको निमित्त कहते हैं। तो ट्यूबलाइट के नहीं होने पर नीर डोसा बन सकता है? बन सकता है। अगर बन सकता है तो ट्यूबलाइट निमित्त नहीं है। तो ऐसी जितनी चीजें हैं जिनके नहीं होने पर नीर डोसा बनता है वो कोई निमित्त नहीं है उसमें, और जिसके बिना नहीं बन सकता वो निमित्त है। तो निमित्त अकिंचित कर कैसे हुआ, ये आचार्य अकलंक देव पूछ रहे हैं, और जो आचार्य अकलंक देव से भी अधिक बुद्धिमान है वो कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आप अपने तरीके से जो भी समझना है समझो, हमें तो ये बात अच्छी तरह स्वीकार हो चुकी है कि निमित्त कुछ नहीं करता, तो ठीक है, आपकी जय हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा मानो। जो आगम से भी अलग मान्यता धारण करके उसमें संतुष्ट है, तो उसके संतोष को अपन क्यों छेड़े? रहो संतुष्ट, अनंत काल तक रहो संतुष्ट, जब तक तुम्हारी इच्छा हो, जब तक तुम्हारी श्रद्धा हो। तो देखिए, आचार्य अकलंक देव, आचार्य विद्यानंदी और सभी जैन आचार्य एक मत से दो कारण मानते हैं। समंतभद्र स्वामी भी बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम, समंतभद्र स्वामी के वचन है, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम, कार्येषु ते द्रव्य गत स्वभाव। वासुपूज्य भगवान की स्तुति में बाह्य और इतर यानी अंतरंग, और इधर सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंग, हेतु द्वय, दो हेतु, कौन से दो हेतु? उपादान और निमित्त, अंतरंग और बाह्य। तो फिर इसको अस्वीकार करना क्या होता है कि उपादान की शक्ति, उपादान की शक्ति, उपादान की शक्ति का इतना महिमा मंडन हो जाता है, जैसे सम्यक्त का महिमंडन इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर उसके सामने कुछ दिखता ही नहीं। मुनियों का महिमा मंडन इतना हो जाता है कि मुनियों का जो लघु स्वरूप है वो कभी समझ में ही नहीं आता, उत्कृष्ट स्वरूप ही दिमाग में रहता है। करते तब शैल नदी तट पर, अभी बरसात गिर रही तो पेड़ के नीचे जो है वो मुनि, बाकी कोई मुनि नहीं है। ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, इसको एकांतवाद कहते हैं। आप सारी बातें पढ़कर तो देखो शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, और एक अक्षर को भी अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो मिथ्या दृष्टि, ये भी ध्यान लेना। अब आगे सोच लो क्या करना है। तो इस तरह अभी आज अपन इतना ही रखते हैं, केवल ज्ञान की चर्चा थी, तो इतना अपार महिमावंत केवल ज्ञान है उसको अपन प्रणाम करते हैं। और केवली के वचनों से ही कल्याण होता है जीवों का, तो उनकी हर बात को स्वीकार करते हैं। यथावत श्रद्धान मिथ्यात्व है, नहीं, यथावत श्रद्धान सम्यक्त्व है, यथा योग्य श्रद्धान मिथ्यात्व है। क्योंकि आपको जो योग्य लग रहा है उसका आप श्रद्धान कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको कुछ अयोग्य भी लग रहा है जिनवाणी में, और अगर आपको जिनवाणी में कुछ अयोग्य लग रहा है तो उससे आपने अपने मिथ्यात्व को सशक्त रूप में प्रमाणित कर दिया कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, क्योंकि मुझे जिनवाणी में जो योग्य उसका श्रद्धान है, और जिसको मैं अयोग्य समझता हूं उस पर मैं श्रद्धा नहीं करता। तो जिनवाणी में श्रद्धा नहीं करता, ये अपने आप आपके मुख से कह रहे हो आप, इसका मतलब आप श्रद्धालु नहीं है। सम्मा इट्ठी जीवो इठम पवनंतु सद्धि, सम्यक दृष्टि जीव संपूर्ण आगम पर श्रद्धा करता है, उसमें से कोई कटौती नहीं करता। और भगवती आराधना की 38वीं गाथा में लिखा है, जो एक अक्षर की भी कटौती करता है, एक पद की भी कटौती करता है, वो मिथ्या दृष्टि है। जैनम जयतु शासनम।